लोग अब कथा प्रसंग में आए, बैठ जाओ, जल्दी करो। ये माने तो हम लोग कथा में प्रवेश करें। हमने भक्ति के तारतम्य से, भक्तों का तारतम्य, जैसी भक्ति होगी उस कोटि का भक्त उतना ही उन्नत होगा, और अपने जिस स्वरूप को भक्त आराधना कर रहा है उसकी आराधना से उसके इष्ट देव, आराध्य देव का भी उत्कर्ष होगा। सनक सनंदन सनातन के उपास्य हैं ब्रह्म, इनसे उत्कर्ष होगा हनुमान जी के राम का, और भक्ति के तारतम्य से उनसे श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। इसी तरह से हमने कल से आरंभ किया, तो इन भक्तों को हमने पांच विभाग किए। पहला भाग बतलाया ज्ञानी भक्त, दूसरे शुद्ध भक्त, तीसरे प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। उसमें से एक एक का हम विचार दे रहे हैं, उन विचारों के साथ में अपनी भक्ति का विचार आप करेंगे, और उनमें जो अच्छा लगे उनमें से ऐसे भक्त का अनुगमन करेंगे जो आपको वैसे ही भक्ति हो, पूरी तरह से सुन करके। हमने कल प्रहलाद महाराज जी का कि भक्ति का तात्पर्य बतलाया, तत्पश्चात हमने शुद्ध भक्ति का तारतम्य बतलाया नहीं, किंतु उसे आगे प्रेमी भक्त हनुमान का बतलाया। आज थोड़े से हम शुद्ध भक्ति के संबंध में और शुद्ध भक्त के संबंध में बतला करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। शुद्ध भक्तों में महाराज अम्बरीश का नाम आता है। ये प्रारंभ से जब साधन करते हैं तो भगवान के शिव मंदिर को अपनी सेवा करते हैं, अपने अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, अपने मस्तिष्क को लगा लिया भगवान की लीला कथाओं के चिंतन करने में। भक्त हो तो इस प्रकार से साधक, दर्शन कर लिया गोविंद जी का और फिर सारे दिन के लिए भूल गए, फिर माला हाथ में नहीं आई, गोविंद जी की तो कुछ कृपा जरूर भई है किंतु बहुत बाकी है और आगे बढ़ना है। भक्ति के नियमों को यथाजथ पालन करना होगा, दीक्षा लेना ही केवल जरूरी नहीं है, उससे जरूरत है दीक्षा लेकर के उसके नियमों का पालन करना। वो अपने सिर को भगवान के चरणों में झुका करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लगा दे, ठाकुर जी को प्रणाम करते, वैष्णव को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते तो साष्टांग प्रणाम आठ अंगों से। ठाकुर जी को प्रणाम सीधे नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी के तरफ में सिर दे करके नहीं करना चाहिए, इसका भी एक वैज्ञानिक पहलू है ना? जो लोग नहीं जानते वो तो सीधा ठाकुर जी के तरफ में सिर कर देंगे, ऐसा न करके ठाकुर जी को दाहिने बाएं रख करके प्रणाम करो, यह शास्त्रीय विधि है। क्यों शास्त्रीय विधि है? यदि सीधा करेगा तो आपको अभिमान होगा कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूं, तब आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, केवल मूर्ति देखेंगे संगमरमर की, मार्बल की या सोने की या लकड़े की आप मूर्ति देखेंगे, ठाकुर जी नहीं देखेंगे। और जब अभिमान आपका दूर हो जाएगा जी प्रभु मैं इन जड़ आंखों से आपका दर्शन नहीं कर सकता, यदि आपके चरणों में शरणागत हो जाऊंगा और आपकी नजर हमारे ऊपर में पड़ जाए तब तो आप दर्शन दे सकेंगे, इस भावों को रखें। इसलिए ठाकुर जी को बाएं रख करके प्रणाम करना चाहिए। गुरु को सामने से प्रणाम करो, गुरु को दाहिने मत रखो, गुरु जी को सामने रख करके प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी को बहुत से लोग आधी परिक्रमा करते हैं, उनको वैष्णव और गुरु मान करके उनकी पूरी चार परिक्रमा करो जैसे ठाकुर जी की करते हैं, उनको गुरु और वैष्णव मानो। इस तरह से सब विधियां हैं। तो ये अपने आराध्य देव कृष्ण की मंदिर में पूजा अपने आप करते, आरती अपने आप उतारते, नौकरों के द्वारा महीना में रखे गए हुए पुजारियों के द्वारा नहीं, झाड़ू अपने आप लगाते ठाकुर जी के मंदिर में, उसको अपने हाथों से धोते, पानी से सब समय भगवान का गुणानुवाद और नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, अथवा उनके गुरु जी ने जो नाम दिया उस नाम को सब समय कीर्तन करते। जिह्वा को किस काम में लगाते? भगवान का गुणानुवाद करने में, और भगवान का जो प्रसाद दिया गया है निवेदित उत्तर आने के बाद में अपनी जिह्वा को उससे तृप्त करते। वैष्णव को सदा सम्मान देते, हाथों को ठाकुर जी की सेवा के लिए, वैष्णव और गुरु की सेवा के लिए इसको युक्त, पैर भगवान का धाम में जाने के लिए, ये भी एक धाम है, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो पैरों से ठाकुर जी की सेवा हो रही है, धाम में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं। इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, कभी लगाया नहीं, ऐसा नहीं महीने पर मंत्री रख दिए, महीने पर अपना कमांडर इन चीफ रख दिया, ब्राह्मणों को रख दिया वो राज्य काज चलाते, राज्य काज में ये नहीं जाते, बस उनको नियुक्त कर रखा था। और ठाकुर जी का सेवा काम श्रवण कीर्तन भागवत इत्यादि श्रवण पाठ ये खुद अपने करते थे। यह है भक्ति के नियम, सदाचार पूर्वक रहना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मछली से दूर रहो, सिगरेट भी न लो, चाय तक भी छोड़ो, इसमें भी स्लो पॉइजन्स हैं। इस तरह से सदाचार रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, तब तो उसका कुछ क्रिया होगी, नहीं तो क्रिया नहीं होगी। आपकी भक्ति पहले में ही श्रद्धा में ही रह जाएगी, निष्ठा रुचि के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। उस समय में एक दिन उनके यहां दुर्वासा जैसे ऋषि, शंकर जी के अवतार है दुर्वासा, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आकाश में विचरण करते हैं, जिसको जो कहते हैं वो हो जाए, बड़ी लंबी लंबी जटाएं उनके पास में पहुंचे। उस दिन द्वादशी था, द्वादशी का उपवास, जहां पर कि महाद्वादशी उत्पन्न हो जाए एकादशी को छोड़कर के महाद्वादशी करना चाहिए, बहुत से ऐसे नियम हैं। तो वो द्वादशी का उपवास कर रहे थे, उपवास करके और दूसरे दिन सवेरे उठ करके ठाकुर जी की पूजा अपने हाथों से करके, और रसोई उनकी पत्नी ने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और ज्यों ही वो पारण करने के लिए जा रहे थे, एकादशी करके एक नियति समय होता है, उस समय के अंदर में द्वादशी के अंदर में पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो फल चला जाता है। उन्होंने पारण करने की व्यवस्था की, इतने में दुर्वासा जी आ गए, उनको प्रणाम करके बोले, जैसे महाराज आज तो हमारा बहुत सौभाग्य है, द्वादशी का पारण है, पहले आप पारण कर लीजिए तब हम लोग पारण करेंगे। उन्होंने जो ठीक है, मैं अभी जमुना जी जा रहा हूं, स्नान करके निकट ही है, मैं आ रहा हूं। गए, जानबूझ करके देरी लगा दी, जब एक दो मिनट का समय रह गया तो वो आए, इतने में अब समय खत्म होने का था। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा और पूछकर कहिए क्या करना चाहिए, उन सब लोगों ने बताया और अपने आप निर्णय लिया, यदि एकादशी का हम पारण नहीं करते हैं तो ये भगवत तिथि की अवहेला हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है, और यदि मैं पारण कर लेता हूं तो ये ब्राह्मण की अवज्ञा हो जाएगी, क्या करना चाहिए। अंत में विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मण का यदि अवज्ञा हो जाती है तो कोई बात नहीं, अनजाने में होगी, हम भगवत भक्ति का पहले आदर करेंगे, वैष्णव का आदर करेंगे, भक्ति का आदर करेंगे। यदि पारण नहीं करते हैं तो एकादशी नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम एकादशी का पहले हम पारण करेंगे। कैसे पारण करेंगे? चरणामृत के जल से। यदि कोई निर्जला उपवास रहे एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, तो दूसरे दिन ठाकुर जी के चरणामृत से उसका पारण हो जाएगा। और यदि कोई कुछ ले लिया है, फल मूल कंद इत्यादि, दूध पानी इत्यादि ले लिया है, तो एकादशी का पारण उसे नहीं होगा। तो ये तो निर्जला उपवास थे, इसलिए इन्होंने पानी लेकर के पारण किया। तुलसी जी का चरणामृत था, तुलसी जी को जरा इधर करके उसका पानी लेकर के एक बूंद लेकर के अपना पारण कर। ऋषि आकर के बड़े क्रोधित हुए, मैं तुम्हें जला करके फंसा दूंगा, नहीं जानते हो मैं दुर्वासा हूं, तुमने हमारी अवज्ञा की, हमारे आने के पहले तुमने खा लिया। हाथ जोड़ करके खड़े रहे, उन्होंने एक जटा उखाड़ी कर, जाओ भस्म कर दो इसे। उसे एक बड़ी भारी कृत्या राक्षसी निकली और उनको जलाने के लिए दौड़ी। भगवान का चक्र उनकी समय में प्रतीक्षा कर रहा है, भक्तों की सब समय रक्षा करता है। आप ही उस कोटि के भक्त हो जाएंगे, सब समय वो रक्षा करेगा। बस तुरंत आकर के कृत्या को तो एक सेकंड में जला दिया और महर्षि के तरफ में बैठा। जब वो कृत्या जलाने के लिए अम्बरीश पर आई तो हाथ जोड़ करके जैसे तैसे निर्भीक होकर के खड़े रहे भगवत चिंतन। और दुर्वासा जी ऐसे सिद्ध महात्मा और शंकर जी के अवतार, जब वो आया सुदर्शन उनको जलाने के लिए तो भगे। तीन जगत में उनको कहीं जगह नहीं मिली, घूमते घूमते पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, अंत में शंकर जी के पास में पहुंचे, हमारी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा जी मैं नहीं कर सकता, विष्णु का द्रोही, भगवत भक्तों का द्रोही मैं नहीं रक्षा कर सकता, जल्दी से यहां जाओ नहीं तो मैं भी, मुझे भी चक्र सुदर्शन नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी भी नहीं किया। अंत में नारायण के पास में पहुंचे, नारायण जी देखो हमने अपना सर्वस्व भक्तों को समर्पण किया है, भक्त ही हमारे हृदय हैं और भक्तों का हृदय मैं हूं, मैं उनके अतिरिक्त और दूसरे को नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं क्षमा कर सकता। क्षमा करना है तो उसी अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, वो क्षमा कर दें, हम नहीं क्षमा कर सकते हैं और हमारा सुदर्शन चक्र भी नहीं क्षमा कर सकता। बड़े फेर में पड़े, भगवान ने बतलाया यदि कांटा पैर में गड़ा तो वो सिर से नहीं निकलेगा। आ रहा है समझ में? पैर कांटा गड़ा है ना पैर में, तो कांटा निकलेगा कहां से? वो पैर ही से तो कांटा तो गड़ा है वहां, और यहां पर आ रहे हो मैं नहीं सुनता। बस दौड़ करके आए, एक वर्ष का समय लग गया महाराज अम्बरीश बिना खाए पिए एक वर्ष तक उनको, उनके लिए हाथ जोड़ करके खड़े थे। त्राही त्राही मुझे बचाओ ये कहकर अम्बरीश के चरणों में जब गिरे, महाराज जी ने उनको आलिंगन पास में बद्ध कर लिया जी। महाराज ये मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे क्षमा की। वो कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए। उस समय में सब सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ करके बतलाया ये प्रभो यदि मैंने कुछ आपकी सेवा की हो, भगवान की सेवा की हो, आप मुझको प्रसन्न हो तो दुर्वासा ऋषि की क्षमा कीजिए और इनको बचाइए। उसी समय में सुदर्शन चक्र जी अंतरिक्त हो गए। एक भक्त गृहस्थ भक्त, राज्य काज में सब लगा हुआ, बाल बच्चों दा, भगवत भक्ति इतनी बड़ी है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। भगवत भक्ति से आप चाहिए तो लाखों करोड़ों रुपए डॉलर्स पैदा कर सकते हैं, पृथ्वी का राज्य पा सकते हैं। ध्रुव तो पाई गया, लाखों लोग इस नाम के बल पर उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, सुना आप लोगों ने? अगस्त ऋषि को देखा, नाम के बल पर उन्होंने समुद्र को ही पान कर लिया सारा, राम को पुल बांधना पड़ा और इनको बस उठाया चूल्हे में और उसे पान कर गए। नाम में इतना बल है, नाम के द्वारा सृष्टि होती है, नाम के द्वारा सब कुछ होता है। और भला उस नाम को आश्रय करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको नौकरी करने पड़ेगी, ये आश्चर्य की बात है। भगवान का आश्रय लेकर के और फिर दूसरी जगह हाथ निपोड़ने जा रहे हैं, ये क्या चीज है? अरे नौकरी करनी है तो हनुमान जी जैसे राम की नौकरी करो ना, कृष्ण की नौकरी करो, गोपियों की ब्रज में जाकर के नौकरी करो। देखो तुम यदि एक भक्त महाप्रभु के भक्त थे, वो दिन रात बड़े करताल जैसे हमारे हैं और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम थे। महाप्रभु एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, देखा जैसे दो दिन से कुछ नहीं मिला खाने के, घर में नहीं है। अरे कुछ खाया पिया? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी एक दो तीन, महाप्रभु जी हमने तो इसका मतलब नहीं समझा, एक दो तीन क्या कर रहा है? इसलिए किया, आज हमको यदि भोजन नहीं मिला आज, आज सारा दिन करेंगे, और फिर यदि नहीं मिलेगा तो कल भी करेंगे हरि बोल, और तभी नहीं तो तीसरे दिन करेंगे, और चौथे दिन यदि भोजन नहीं मिला हमारे परिवार को हमको तो गंगा जी यहीं में कूद जाएंगे। महाप्रभु बोले मेरा एकदम ये निश्चित मत है कि लक्ष्मी जी पात्र लेकर के भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा करेंगे, किंतु भगवान का नाम करने वाला कभी भी भूखा नहीं रह सकता। इस चीज को याद रखिए, हम लोग त्यागी सन्यासी हैं, पैसा नहीं है एक पैसा। उन लोगों जैसे परमहंस यहां पर एक देखा आश्रम, करोड़पति का भवन बना हुआ, हम लोग वैसे नहीं है। हम तो रोज भिक्षा करके जीवन का निर्वाह करते हैं, किंतु हम ये जानते हैं कि हमारे पास में यदि 1,00,000 आदमी अभी आ जाएगा उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। हनुमान जी आ जाएंगे, शंकर जी आएंगे, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएगी, राधा जी पधार आएंगे, हम जानते हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ में नाम करो तो नाम होगा, और ये विश्वास ही नहीं है तो नाम क्या हुआ? भगवान का नाम का आश्रय लेकर के दूसरों के हाथ निपोड़ रहे हैं, ये भजन है। भगवान का भक्त किसी के पास में गृह पर नहीं जाता। मैं अभी अमेरिका इंग्लैंड हॉलैंड इत्यादि 50 देशों में 10-15 बार घूम आया। हमको पैसे देने चाहे, हमने कहा जब पैसे के लिए भारत से दरिद्र होकर के मैं नहीं आया, हम तो समृद्ध भारत से हम आए हैं, तुम लोगों को कुछ देने के लिए जो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। लाखों लोग हमारे पीछे लग गए, उनको भगवान का नाम दिया और विश्वास करना सिखलाया, हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को समझाया, जैसे अम्बरीश महाराज का बतलाया, बड़े खुश हो गया। आज देखिए उसमें से हम समझते कि यहां पर भी 20-25 आए हुए हैं, और मथुरा में तो हजारों आते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद फिर जाने के, हमको छोड़ते नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के भक्ति के विचारों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप लोग हरिनाम ले लिया, दीक्षा लिया, गोविंद जी का ये बस दर्शन कर लिया, और थोड़ा सा कोई दुख आया तो बिल बिल आने लग गए, ऐसा नहीं। भगवान पर नाम पर विश्वास रखो। यदि विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले वो है, उनका हम शरणागत हुआ, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं कि भगवान का नाम का आश्रय करने वाला भगवत भक्त को कभी भी कोई कष्ट दुख इत्यादि नहीं हो सकता। हाँ एक बात है, भगवान के भक्त लोग बड़े बैरागी होते हैं, लाख देने पर भी नहीं लेते, मालूम होता है कि दरिद्र है। सुखदेव गोस्वामी दरिद्र है कि बैरागी है? दरिद्र है गोस्वामी, कपड़े नहीं पहनते, उनको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ऐसा मत समझो। वो लाखों लोगों को कपड़े दे सकते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर सकते हैं, इस तरह से समझो। इसलिए भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा होता है, इस चीज को समझ करके गोविंद जी और गोविंद के भक्तों में तारतम्य रख करके चलेंगे। यदि गोविंद के भक्तों की सेवा नहीं कोई करेगा, गोविंद को नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अम्बरीश महाराज जी का आचरण ठीक रखो, प्रतिदिन सवेरे 1 घंटा नहीं हो तो 8 घंटा, नहीं तो 15 मिनट जरूर नाम करो। गुरु जी का दिया हुआ दीक्षा मंत्र जपो, सदाचार अवलंबन रखो, गंदी चीजों को मत लो, जूता पहन करके रसोई मत करो, पश्चात देशों का अनुसरण मत करो, हमारी भारतीय संस्कृति पद्धति के विचारों को लेकर के चलो। धोती बांधने में बहुत लाभ है, साड़ी पहनने में बहुत लाभ है। आज पश्चात देशों की सारी लड़कियां अच्छी सी सुंदर सी भारतीय पोशाक पहन रही है, धोती पहन करके ठाकुर जी को उषा जी प्रणाम कर लेंगे, और कोई पैंट पहन करके करे तो एक तो बैठ ही नहीं सकता कथा में पैंट पहन करके, पैंट जरा हो जाएगा ना खड़ा, बैठ नहीं सके, इसलिए धोती बांधो, भारतीय संस्कृति में आओ, सरल सहज में पैंट बनाने में लगेगा 5,000 रुपया और धोती में लग जाएगा, आजकल तो बहुत कपड़े महंगे हो गए तो भी आपको 50-60 रुपये मिल जाए साड़ी के भी, ऐसा हमारी भारतीय जैसी पद्धति और विश्व में कहीं नहीं, हमें चारों तरफ घूम करके आया, लोगों को किसी पर विश्वास नहीं है, अभी हमारे यहाँ कुछ कुछ है उसको बचाओ नहीं तो यह संस्कृति मिट जाने वाली है। राजस्थानी ये जो पोशाक है लहंगा और चुंदरी, इसको बजाए रखो, अपने बहुओं को भी आप लोग शिक्षा दो जो वैसे ही बने, आप अपने बेटों को भी वैसा ही शिक्षा, जो गोविंद जी का अंतर मंदिर में जाते हो इस प्रकार से होकर के जाओ सदाचार अवलंबन पूर्वक, तो भजन में रुचि होगी, सात्विक वृत्ति होगी, पैंट इत्यादि पहनने से तामसिक वृत्ति हो जाएगी, इसलिए ये भारतीय पद्धति बहुत सुंदर है। हमारे भागवत इत्यादि में ये सब चीज का ये व्यवस्था दी गई है, अभी आप दर्शन खुलने जा रहा है, अब इसके बाद में हम दूसरा प्रसंग बतलाएंगे, यही तक रहे। गौ प्रमानंदे जय जय श्री राम। अपना प्रसंग आरंभ करते हैं, हमने अम्बरीश महाराज की बात बतलाई, भाई साधन भजन करना है तो ठाकुर जी को धोखा देने से नहीं चलेगा। हरिदास ठाकुर जी भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 लाख हरिनाम करते थे, 64 × 3 गुण, 64 × 3 का कितना हो गया 192 राउंड करते थे, संख्या में नहीं इतना नाम करते थे माला में, एक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, ऐसे एक एक कर करके 108 हो जाने के बाद में एक, ऐसे 192 बार करते थे, कभी सोते कभी वो भी नहीं, और कुछ खाते कभी वो भी नहीं, इस बात से इस तरह से नाम करते, कभी उच्च स्वर से करते, कभी धीरे धीरे, कभी मन ही मन में करते, इनके संग से न जाने कितने लोग सुधर गए, भाव से लाखों लोग। वाल्मीकि जी 1-2 दिन नहीं 60,000 वर्ष तक निरंतर नाम करते रहे, तब तो इनका फल हुआ, अंततः इतना ना करो ध्रुव जैसा तो करो, और हरे नाम की माला नहीं छुएंगे, और छुएंगे तो मन रहेगा इधर, भगवान का भजन कैसे करेंगे। लीलाओं का चिंतन करते हुए और भगवान का नाम निरंतर करें, सारी आकांक्षाएं उससे मिट जाएगी और भगवान के चरणों की भी प्राप्ति हो जाएगी। इन अम्बरीश महाराज से हनुमान जी सिद्ध हैं, ये अभी साधक थे अम्बरीश महाराज, हम लोगों को दिखलाया जे कैसे साधन करना चाहिए, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे बनना है। अब चलिए हनुमान जी के तरफ में हमने बतलाया कैसे भक्त हैं। एक समय रामचंद्र जी राज्याभिषेक के बाद में सबको पुरस्कार देकर के उनको विदा कर रहे हैं, अंगद इत्यादि को विदा किया, सुग्रीव को और दूसरों को, जामवंत को, सबको विदा जब कर रहे थे उस समय में हनुमान जी को उन्होंने बुलाया, हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं, सीता जी के तरफ में देखा, सीता जी ने एक 9 लक्खा हार दे दिया उनके गले में, जो विवाह का समय का था, हनुमान जी ने उसे देखा, गले से निकाल करके एक मनिया को तोड़ दिया दांत से, देखा फेंक दिया, इस तरह से सारे मनियाओं को तोड़ करके फेंक दिया, तो राम जी हंसे, विजय आखिर तो बंदर क्या जाने आधा का स्वभाव, अदरक वही आदर, क्या सवाल, क्या जाने आपने सब तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ा बतलाइए। ये सीता जी ने दिया, उन्होंने कहा जी मैं देख रहा था इसमें तोड़ करके, इसमें राम है कि नहीं, राम नाम तो तेरे हाथ तेरे हृदय में है तो देख लीजिए। बस ऐसा फाड़ा और ऊपर से नीचे तक राम राम, रोम रोम में, बिना वो नाम के रहते नहीं। ये हरिदास जी को बतलाया इन्हीं से भी यदि, वो तो 24 घंटे में हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट सो जाए, इनको सोने से कोई संबंध नहीं। तब भगवान के ऐसे भक्त हैं, और हम लोग चाहते हैं सेंत मित में। गुरु जी ने माला दे दिया, बस रख घर में रख दिए, गीता जी गुरु जी ने पढ़ने के लिए और गीता को बांध करके रख दिया ऊपर, भागवत देखा नहीं, ऐसे ही भक्ति हो जाएगी। यदि भजन करना है तो इन लोगों को देखो, हनुमान जी में इतनी है, सब सेवा करते हैं, किंतु बहुत सी सेवाएं हैं उसमें नहीं जा सकते। यदि रनिवास के अंदर में सीता जी के साथ में किसी कारण से हैं, हनुमान जी नहीं जा सकते। कोई मीठी चीज खा रहे हैं हनुमान जी और उनकी इच्छा हुई है तो बहुत मीठा फल है, अपना जूठा नहीं दे सकते। राम को आलिंगन करके हृदय पास में बद्ध नहीं कर सकते। बहुत सी उनकी प्रेम में कुछ कमियां दिखती है नहीं, किंतु प्रेमी भक्त के से साथ में तात्म्य में जब विचार करते हैं तब देखते हैं। देखो पांडव लोग हैं, द्रौपदी जी हैं, भगवान की कितनी प्यारी है। किस प्रकार से पांचों पांडव लोग विशेष करके अर्जुन द्रौपदी इत्यादि राम उनकी कृष्ण की सेवा करती हैं। यहां तक कि एक बार देवर्षि नारद किसी भक्त को देखने की इच्छा थे, जब मैं देखूं किसी भक्त को जो इस समय वर्तमान काल में सबसे भक्त हो, शंकर जी ने उनको भेज दिया नारद जी को हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में, अर्जुन के भवन में जाकर के देखना। अर्जुन के भवन में गया, देखा उन्होंने बिना लिए हुए जा रहे थे, देखा क्या, अर्जुन के भवन में पलंग बिछा है, उस पलंग पर कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ में सोए हैं, एक तरफ सिर करके नहीं, जिधर अर्जुन का सिर है उधर में कृष्ण का पैर है, और जिधर कृष्ण का पैर है उधर अर्जुन का सिर है, जिधर कृष्ण का पैर है उधर में द्रौपदी और सुभद्रा जी चमर जला रही हैं, और जिधर कृष्ण का सिर है उधर में सत्यभामा रुक्मणी इत्यादि चमर डुला रही। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, अर्जुन के पैर को कृष्ण ने अपनी वस्त्रक्षल पर रखा है, और अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण के चरण कमलों को अपने वस्त्रक्षल में करके इधर में किया। कैसा प्रेम, हनुमान जी ऐसा सो सकते हैं राम के साथ में, कभी कल्पना भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब तो वो अर्जुन और द्रौपदी और कृष्ण का नाम लेने लग गए और नाचने लगे आनंद से। यही नहीं, अर्जुन के घोड़े धोते हैं, रथ चलाते हैं, सेवक का काम करते हैं, हनुमान जी का सेवा का काम राम करेंगे, किंतु अर्जुन क्या करते हैं, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए, बोले जी मैं लड़ूंगा नहीं, तुम हमको ले लो, और दुर्योधन से बोले हम लड़ेंगे नहीं, हमारी सेना एक तरफ है, सब सेनापतियों के साथ में मैं अकेला मैं लड़ूंगा नहीं, तुम किसको लेना चाहते हो, तुम पहले आए। ये जहां सोए हुए थे कृष्ण भोर में, उसी समय में दुर्योधन पहले आया, वो देखा जब पैर की तरफ में बैठने से तो हमारा सम्मान होगा, वो सिर की तरफ में बैठ गया, और पीछे में अर्जुन आए तो वो पैर की तरफ में बैठ गए, तो कृष्ण झट उठे, अरे अर्जुन तुम कब आया, तो दुर्योधन पीछे से कहता है जब प्रभु मैं पहले आया था, अर्जुन पहले ही नहीं आया, ओ आप आए हैं पहले, अच्छा तो आप बतलाइए किस लिए आए? मैं आपको लेने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आप हमारे तरफ से महाभारत युद्ध में युद्ध कीजिए। कृष्ण ने कहा जी देखो मैंने प्रतिज्ञा की है मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब अस्त्र शस्त्र अपने हाथों से नहीं उठाऊंगा कभी। तो एक तरफ में मैं हूं और एक तरफ में हमारी सारी चतुरंगनी सेना है, दोनों में से कोई आप ले लीजिए आ गया है तो जो आप लड़ेंगे नहीं तो आपकी जरूरत क्या। तो अपनी चतुरंगनी सेना सेनापतियों के साथ में दे दी, उनको दे करके विदा किया। अर्जुन ने कहा जी मैं तो मरने वाला था आपने बचा दिया, हमको चतुरंगनी सेना की जरूरत नहीं, हमारे अपने मन की सारथी की जरूरत है, बस हमारे मन के ऊपर में बैठ करके हमारा संचालन करें, हमको युद्ध युद्ध। आप इच्छा मात्र से करोड़ों करोड़ों जगतों का भी संहार और प्रलय कर सकते हैं, इसलिए हमको आप ही की, जो आप नहीं मिलते मैं प्राण छोड़ देता। देखो कैसी इनकी निष्ठा है और कैसी निष्ठा है। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध आरंभ हो गया, भीष्म पितामह जी 10,000 रथियों को रोज मार रहे हैं, ऐसा करने से 10 दिन के अंदर में तो सारी सेनाओं को ही चौपट कर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। उसी समय में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में गया, पितामह जी आप लड़ तो रहे हैं हमारी तरफ से यह बात ठीक है किंतु विजय चाहते हैं पांडवों, आपके ये देखने सुनने से मालूम होता है पांचों पांडवों में से कोई आपके सामने जाता है आप उसको नहीं मारते, क्यों? तो इसका मतलब है आप पांडवों का विजय चाहते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे तरफ से लड़ रहा हूं, मैं तनिक भी कुछ कमी नहीं दिखला रहा, यदि ऐसी बात है तो आप हमारी पत्नी जी को वरदान दीजिए, क्योंकि आप जो कुछ कहेंगे वो सत्य होगा, जे इसमें युद्ध में तुम्हारी जय हो। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो मैं लड़ने आया हूं, रात के समय में आधी रात के समय में मैं समाधि में मग्न रहूंगा, तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना और उस समय में मैं उसको ये वरदान दूंगा। तो ठीक है, बात ठीक हो गई। युद्ध बंद हो जाने के बाद में शाम को रात में ठीक 12 बजे घना घोर वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने लगी, आंधी तूफान चलने लगे, पेड़ पर्वत सब गिरने लगे। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कहा आज जाने की बात थी भीष्म पितामह की, किंतु इसमें अंधड़ में हम जाएंगे कैसे है? अभी कभी वज्र गिर गया, कभी कुछ हो गया, हम ही मरेंगे, आज रहे तो कल चलेंगे। और कृष्ण ने उसी समय में द्रौपदी को बुलाया, सखी अभी तू हमारे साथ में चल, एक जगह चलना है, कहां चलना है? भीष्म पितामह, इसलिए ऐसी बात है, समझा दिया। उनसे जाकर के उनके सामने भुखट निकाल करके जाने ये तुमको देख न सके। आज दुर्योधन की पत्नी क्या भानुमती को जाने की बात थी किंतु आज जाग नहीं सकेंगे, मैं जानता हूं, इसलिए तुम जाकर के वहीं पर खड़ी हो जाना और तुमको वो बर दे देंगे, ये तुम लोग युद्ध में विजयी होगी और तुम्हारा सुहाग नित्य ठीक रहेगा। बात ऐसे हुई, कृष्ण अपने रथ पर चढ़ा लिए अर्जुन के रथ पर और चढ़ा करके लेकर के गए उनके शिविर में, जहां पर कि वो रात में विश्राम कर रहे थे, उस समय समाधि मग्न थे। द्रौपदी जी को रथ से उतारा, तुम जाओ घूंघट निकाल लो, वो घूंघट निकाल करके उनके पास में गई। सामने जाने के बाद में कुछ देर के बाद में उनकी समाधि टूटी, देखा जी वो भानुमती जी आ गई है, बस उसको कहा बेटी तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा भाग अखंड सौभाग्य हो, मतलब क्या युद्ध में तेरी जय हो जाएगी, नहीं तो तुम मारा जाता ना तो वो लोग मारे जाएंगे, तुम नहीं मारी जाएगी। उन्होंने भानुमती समझ करके अब ये बर दे दिया, तब वो मुस्कुराती हुई घूंघट उठा करके उनके चरणों में गिर गई। अरे बेटी तू कैसे यहां रात में आ गई, तेरी आने की तो बात नहीं थी, ओ तुम्हारे साथ कोई आया है, कौन आया है बतलाओ? तो वही आया है जिसको आप समझ रहे हैं, स्वयं भगवान शरणागतों की रक्षा करते हैं, हनुमान के लिए ऐसा कृष्ण या राम नहीं कर सकते, क्योंकि प्यारी सखी है, गोपियों को जैसे सखी कहते थे अपनी बहन सुभद्रा से, अपनी बहन का इनका सुभद्रा जी का बहुत आदर करते थे, जहां बुलाया चुटकी से आ जाते, किसी के लिए आसान नहीं था। इसलिए पांडव लोग श्रेष्ठ है। केवल यही नहीं, ये तो बतलाया कि कृष्ण उनकी सेवा करके अपने को सार्थक कर रहे हैं। कुछ और सुनिए, एक समय की बात है, अब सुभद्रा जी कुछ बड़ी हो गई है, बहुत पहले की बात, बड़ी हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है, और शादी के जो अब 24-25 वर्ष की, 24 वर्ष की हो गई है। उस समय में घर वालों को चिंता हुई वसुदेव देवकी की, कृष्ण की, बलदेव की, जिसकी शादी हो जानी चाहिए, योग्य वर से होनी चाहिए। बलदेव जी की बात चलती थी घर में, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, कृष्ण की भी नहीं, वसुदेव देव की भी नहीं। उन्होंने स्थिर किया, बलदेव जी ने, इसकी शादी हम सब प्रकार से जो दुर्योधन है इससे देंगे, और घर के बाकी सब लोगों की, वसुदेव देव की, कृष्ण और घर के सभी लोगों की, सारी महिलाओं की, सत्यभामा रुक्मिणी की भी इच्छा थी कि हमारी ननद की शादी किससे हो। अर्जुन चुके हैं, सब प्रकार से वीर हैं, बहुत चरित्रवान हैं, गुणी हैं, इसलिए इनके साथ में, किंतु बलदेव जी की इच्छा नहीं थी। इसलिए बलदेव जी ने समझ रखा था जैसे अब शादी उसी से हम कराएंगे समय पर, और सबसे वो कह भी दिया था, किंतु इन लोगों ने कुछ बतलाया नहीं। कृष्ण से और अर्जुन से कुछ गुप्त बातें हैं, और इसके बाद में अर्जुन, हम लोगों का ये त्रिदंड है, त्रिदंड वेश लेकर के, गिरे हुए कपड़े पहनकर, चोटी रखकर, गले में तुलसी की माला, खड़ाऊं पहनकर, और द्वारका में पहुंच गए, और समुद्र के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटी छोटी सी झोपड़ी बना करके, और वहीं पर भगवान का ध्यान और जप और चिंतन कर, उनका यह रूप देख करके, रूपांत तो थे ही, रूप देख करके और गुण देख करके सारे द्वारकापुरी के सब लोग आने लगे, और विशेष करके कृष्ण ने प्रचार किया है, समुद्र के किनारे एक सिद्ध महात्मा आया है, उसको यदि द्वारकापुरी में किसी ने देखा तो इतने सारे मनोरथ पूरा हो जाएंगे। इसलिए सभी जितने थे द्वारकापुरी वाले, महिला पुरुष, सब लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी बहुओं ने बतलाया कि देखो सुभद्रा, चलो हम लोग चले उनका दर्शन करें, महात्मा जी का जो को भी आकांक्षा होगी पूरी हो जाएगी। सुभद्रा जी को नक्श से सिख तक श्रृंगार किया, तरह तरह के आभरण आभूषण उनको पहनाया, और एकदम नवेली सी बनाया, और बनाने के बाद में महात्मा जी का दर्शन, त्रिदंडी महात्मा जी का दर्शन करने के लिए उनको ले गई। जब दर्शन करने के लिए गई तो पहले से अर्जुन को वो जानती थी, और अर्जुन भी इसको जानते थे, किंतु हम लोगों के हिंदुओं में ऐसी बात थी वैदिक संस्कृति में, जब तक कि यथार्थ शादी न हो जाए आंख उठा करके न देखे, किंतु बात तो चली पड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सुभद्रा जी आ गई है, और इनकी कौन ओस रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि सजा करके ले आई है। जब उनको प्रणाम करने बैठी और अर्जुन को पहचाना तो अर्जुन ने मुस्कुरा दिए, उसने भी मुस्कुरा दिए, और अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जिस रथ पर सुभद्रा जी आई थी उसी के ऊपर में चढ़ा दिए, और अपने भी चढ़ गए, सुभद्रा के हाथों में घोड़े की राश दे दी, और अपने अर्जुन शस्त्र लेकर के खड़े हो गए। जो रक्षक थे जब उन्होंने मना किया तो अर्जुन ने उनको मार कर भगा दिए, और द्रौपदी ये रथ चढ़ा करके भगा रही, सुभद्रा जी चला रही है रथ, अर्जुन उसमें बैठे हैं, और इतने बलदेव जी हल और मुसल लेकर के चढ़े, दौड़े क्रोध के मारे। अर्जुन हमारे घर में आकर के इतना अपमान किया, इतने लाखों जदवंशी वीर हैं, जादो लोग हैं, और हमारे घर से हमारी बहन को ले गया, आज उसको बिना मारे हुए छोड़ेंगे नहीं, क्रोध से उनके तरफ में दौड़े। कृष्ण बीच में मिल गए, कहे भैया कहां जा रहे हैं? तो जा रहा हूं, देखता नहीं हमारे आज वंश का जितनी प्रतिष्ठा की धूल में मिला दिया, हमारी बहन को यहाँ पर रथ में लेकर के और चला जा रहा है हम लोगों के सामने, अभी उसको मारूंगा। कृष्ण ने कहा जी देखो तो जैसे ये अर्जुन रथ चला रहा है ना सुभद्रा चला रही है, कौन चला रहा है? तो देखा जी सुभद्रा, तो सुभद्रा भाग ली है लेकर के अर्जुन को, ना अर्जुन भाग रहा है, हम तो देख रहे हैं सुभद्रा ही भाग रही है, और आप उनको मारने के लिए जा रहे, सुभद्रा को मारेंगे ना उसको मारेंगे? ओ तुम्हारी भी यही रुचि है, तो पहले क्यों नहीं बतलाया हमको? और अर्जुन को मारेंगे तब तो वो तो शादी हो ही गई, जिस तरह से हो गांधर्व विवाह, इसलिए तो तुम्हारी बहन विधवा होगी, अब क्या करेगा? कहे पहले क्यों नहीं हमको बतलाया? इतनी साजिश भीतर से चल रही थी परिवार भर की और हमको बतलाया नहीं। तो अर्जुन कृष्ण के ऐसे प्यार है जो अपनी बहन को भी दे करके अपना बहनोई बनाया है, और हनुमान जैसे वीर को राम भक्तों को क्या किया? ओ हमारे इस भक्त की रक्षा करने के लिए इसके ध्वजा पर सब समय 24 घंटा विराजमान रहेंगे, कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम इसके लिए आपको रिस्पांसिबल समझेंगे, इसलिए अर्जुन के रथ के ऊपर में रह करके सब समय उनकी रक्षा करते हैं, कोई कुछ होता है बस ऐसा हुंकार करते हैं कि उसका बाण ही चुक जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी को जिनकी सेवा में लगा ली तो वो कैसे हैं, ये हमारे पांडव लोग, आप द्रौपदी को तो जानते, द्रौपदी को पांडव में सबसे अधिक प्रीति करते, क्यों प्रीति करते थे? द्रौपदी के कृष्ण ही सर्वस्व थे और इसीलिए वो अपनी सुभद्रा से भी अधिक द्रौपदी का सम्मान करते थे, बड़ी गुणी थी। अब इनसे भी, इनमें भी कुछ कमी है, जहां अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जबकि कृष्ण का विराट रूप देखा, असंख्य लोग उनके मुख में जा रहे हैं और सभी मृत्यु मुख में पतित हैं, सभी उनके दांतों तले में मरे हुए पड़े हुए हैं, ये कृष्ण ने दिखलाया, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभो हे समस्त ईश्वरों के ईश्वर, मैंने आपको फूल बस्तर सखा कहा, कभी भी कहा हो मेरा अपराध हुआ, आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, आपको मित्र नहीं कहूंगा, आज से आप हमारे सारथी नहीं रहेंगे, अब से हमारे आप प्रभु हैं, ईश्वर हैं, हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, इस प्रकार से कहेंगे। ये क्या चीज है? देखो भगवान की भक्ति दो प्रकार की होती है, भगवान की लीलाएं भी दो प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य लीला एक माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला किसको कहते हैं? जहां पर भगवान की भगवत्ता प्रकाशित हो उसको ऐश्वर्य लीला कहते हैं। कैसी ऐश्वर्य लीला? जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण किया गया ऐश्वर्य है, द्वारका में कभी कभी शंख चक्र गदा पद्म लेते थे, कितने राक्षसों को उन्होंने विनाश किया जो दूसरों के लिए संभव नहीं, ब्रज में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया कानी अंगुली से, ये क्या है? ऐश्वर्य लीला है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी लीला जो मनुष्यों के लीला के शक्ति के बाहर है, ऐसी लीलाओं को प्रकाश करते हैं, उनको ऐश्वर्य लीला कहते हैं, और उस रूप को ऐश्वर्य रूप। तो कृष्ण के बहुत से रूप हैं, ब्रज में एक रूप है, मथुरा में द्वारका में एक रूप है, द्वारका में मथुरा में ऐश्वर्य लीलाएं हैं। कंस को मारना सहज काम नहीं था, उसको मुक्ति दे देना ये सहज काम मनुष्य नहीं कर सकता, गिरिराज को गोवर्धन को उठाया, उस समय ब्रजवासियों की बड़ी भीड़ लगी, उपानंद इत्यादि आए, शांडिल ऋषि इत्यादि आए, गर्गाचार्य आए, नंद जी को बुलाया, बैठक हुई। देखो ये कृष्ण को साधारण बालक मत समझो, बालक अवस्था में 3 दिन 4 दिन का रहने पर इसने पुतना को मार डाला, अघासुर बकासुर इत्यादि सब को मारा, अभी गोवर्धन को धारण कर लिया, ये साधारण मनुष्य का काम है? ये कोई भगवान का अवतार है या कोई बहुत बड़े ऋषि महर्षि हैं या कोई हैं, इनको कभी कान मत उमेठना, जसोदा जी को कह देना, उनको गाली गलौज न करें, आप भी उसको अपना जूता लेकर के उसके सिर पर मत दीजिए। कभी कभी नंद बाबू कहते हैं हमारी जूती लइयो तो यहाँ पर रख करके थे थे नाचते भी जाते हैं, इसको जूठा मत खिलाना, सावधान रहना। इसलिए सब मना कर, क्यों? अरे ये भगवान होगा, भगवान का अवतार है, गर्गाचार्य ने भी ऐसा बतलाया। तो नंद बाबा जी हंसने लगे, हंस करके कहने लगे, देखो गोप लोग 80 वर्ष के बाद में नाबालिग वोट देने के अधिकारी होते हैं। समझा क्या कहा? 80 वर्ष के बाद में उनको वोट देने का अधिकार होता है, तो ये जितने हैं ऐसे ही हैं। अरे बतलाओ, बुद्धि के पहाड़ों, जिनको 10 बार दिन में भूख लगती है, जो कि मक्खन और मिश्री की चोरी करता है घरों घरों में, एक दो घरों में नहीं, वो भगवान हो गया? जिसको भूख लगती, भगवान को कभी भूख लगती है? उसको तो लगती नहीं। यशोदा मैया से बार बार हट करता है और झूठ बोलता है, भगवान कभी झूठ बोलता है? मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया, इस तरह से झूठ बोलता है। और क्या करता है? लड़कों से लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये ब्रह्म कैसे बन गया? ये ब्रह्म कभी नहीं हो सकता है। और ब्रह्म यह तो हमारा लड़का है, हम इसका शासन करेंगे, इसके हम मंगल के लिए हम कार्य करेंगे। नंद बाबा नहीं मानते, ब्रज का कोई भी नहीं मानता है, इसलिए ब्रज के वो भगवान नहीं है। हो सकता है कि हम लोगों के लिए भगवान गोविंद जी हो सकता है द्वारका वालों के लिए भगवान हो, मथुरा वालों के लिए विशेष करके भगवान हो, किंतु ब्रजवासियों के लिए ये गोविंद कौन है? जो सोदा जी के लाला हैं, मक्खन मिश्री चुराने वाले हैं, धूर्त है, झूठ बोलने वाले हैं, एक साधारण लड़के जैसे हैं, गौओं को पीछे पीछे ढोलने वाले हैं, इसको कहते हैं माधुर्य लीला। और वहां वाले को ऐसे भक्त जो है ब्रज के, ये माधुर्य लीला ही चाहते हैं। कभी भी कृष्ण को भगवान कोई भी ब्रज का सखा से लेकर यहां तक कि गौए बछड़े तक भी नहीं मानते को भगवान। ये उपासना सबसे है, यही उपासना गोविंद जी की। उनको जहां भगवान माना सब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो भगवान हो जाएंगे द्वारकाधीश के, फिर ये गोविंद जी नहीं रहेंगे। जहां गोविंद जी हैं वहां पर गायें रहेंगी, उनकी बंसी रहेगी, मोर मुकुट रहेगा, उनका परिचय होगा जो नंदन नंदन या यशोदा नंदन है। द्वारका में जाएंगे तो बंसी रहेगी नहीं रहेगी, वहां पर मोर मुकुट रहेगा नहीं, वहां पर ग्वाले नहीं रह सकेंगे, वहां पर परिचय नहीं देंगे जो मैं नंद बाबा का बेटा हूं या यशोदा का बेटा हूं, मैं राधा कांत हूं, ये नहीं कह सकते, उनका परिचय ही बदल जाता है। इसलिए माधुर्य लीला के बहुत बहुत ये ऊंचा है माधुर्य लीला, ये ब्रज के अतिरिक्त, वृंदावन के अतिरिक्त में और कहीं भी ये संभव पर नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं योगी प्रेमातुर। अभी तो प्रेम पर कहा पांडवों का, अब प्रेमातुर कौन से भक्त लोग हैं? ये है उद्धव और वृंदावन। क्या करते हैं वो लोग? तो कभी कभी साथ रहते हैं पांडव लोग, और बहाना बना करके युद्ध लड़ते हैं, जो कृष्ण को बुला लाए, ऐसे नहीं कृष्ण आते, जुआ खेला उसमें सब कुछ हार गए। इसलिए युधिष्ठिर जी हारने वाले नहीं थे, किंतु हारे क्यों? हारने से कृष्ण आएंगे, कोई गड़बड़ी होगी, ऐसे तो आएंगे नहीं। इसलिए जब जब जरूरत पड़ती कृष्ण को बुलाने के लिए युद्ध में कहीं हार जाते, कभी जुआ में हार जाते, कभी कुछ हो जाता, जानबूझ करके उनका षड्यंत्र था। कृष्ण भी उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाते, वो ऐसे भक्त लोग हैं, किंतु रहते हैं यहां द्वारकापुरी में, और वहां पर उद्धव जी उनके सबसे प्यारे भक्त हैं। इनसे बढ़कर के और कोई प्यारा कैसे भक्त है? उनके मंत्री हैं,